हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सबसे पहले जूली वेदांत को अपने अपार्टमेंट ले गई, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर था। अपार्टमेंट में जाकर उसने वेदांत की चोट पर बैंडेज की। बैंडेज करते वक्त वेदांत की निकटता से जूली बहुत प्रभावित हो रही थी और वो चाहती थी कि वेदांत ऐसे ही उसके पास रहे। बैंडेज करने के बाद उसने उसके लिए कॉफ़ी बनाई और फिर उसके पास बैठकर बोली, आप फिक्र मत करिए सर, बहुत जल्दी विहा मैडम ठीक हो जाएंगी और फिर से आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगी जैसे पहले करती थीं। वेदांत ने एक नज़र जूली की तरफ देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान ढंग से नहीं आ पा रही थी। ये देखकर जूली ने फिर उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मैं आपको पूरा शहर घुमाती हूँ और अपनी पसंदीदा जगह दिखाती हूँ। शाम के वक्त वेदांत और जूली एक हिल स्टेशन पर बैठे थे, जहाँ से वे सूर्यास्त देख रहे थे। जूली ने अपने हाथ में दो कप चाय पकड़ रखी थी और वो वेदांत को बार बार बोल रही थी कि वो चाय पीकर देखे, क्योंकि उसे यहाँ की लोकल चाय बहुत अच्छी लगती है। वेदांत को भी ट्राई करना चाहिए, उसे भी अच्छी लगेगी। वेदांत ने आखिरकार जूली की जिद के सामने हार मानते हुए उसके हाथ से वो चाय का कप ले लिया। ये देखकर जूली के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है सर, जब भी आप मुझे ऑफिस में डांटते हो तो मैं यहीं आती हूँ चाय पीने के लिए। ये चाय पीते ही मेरा सरदर्द बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि अंकल बहुत कड़क अदरक वाली चाय बनाते हैं। वेदांत ने जूली की बातों में रुचि लेते हुए कहा, मैंने कब डांटा तुम्हें? अक्सर तो तुम ही मुझे डांटती रहती हो। ऐसा लगता है मैं तुम्हारा बॉस नहीं, बल्कि तुम मेरी बॉस हो। वेदांत की बात सुनकर पल भर के लिए जूली ने अपनी जीप को अपने दांतों तले दबा लिया और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोली, सर, इतनी छूट सिर्फ आप ही ने मुझे दे रखी है। आप मेरी बातें मान लेते हो और मेरे सुझावों को स्वीकार कर लेते हो। आपके अंदर वो वाला अहंकार नहीं है कि हर बार आप ही सही हो और सामने वाला गलत हो। बस यही वजह है कि मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा ही आरामदायक हो गई हूँ, वरना कोई बॉस ऐसा नहीं होता है जो अपने एम्प्लॉय की बात इतनी ज़्यादा माने। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ जब जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ कि मुझे कितना अच्छा बॉस मिला है। वेदांत की बात सुनकर वेदांत बस हल्के से मुस्कुराया और सिप सिप करके चाय पीने लगा। उसके दिमाग में अभी विहा का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। वो चाहकर भी उसके उस चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जूली और वेदांत दोनों वहां ब्रिज पर वॉक कर रहे थे। जूली ने अपने चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, आपको पता है सर, मेरा छोटा भाई भी आपको बहुत मानता है। जब भी मैं परेशान होती हूँ वो मुझे बोलता है कि अपने वेदांत सर से बात कर लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और मैं हमेशा सिर्फ ऑफिस के टॉपिक पर बात करती हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा मन हल्का हो गया है। आप भी मुझसे बातें शेयर कर सकते हो, आपको भी अच्छा लगेगा। जूली की बातें सुनकर वेदांत भी चाहता था कि कुछ देर के लिए उसका ध्यान विहा से हट जाए, इसीलिए उसने आगे पूछा, और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में और तुम्हारा भाई क्या करता है? जूली ने खुश होते हुए कहा, मेरा भाई वो क्या करेगा, वो तो बस 8 साल का है, स्कूल जाता है, इस बार 3rd स्टैंडर्ड में हुआ था, और उसके अलावा मेरी फैमिली में कोई नहीं है। ये सुनकर वेदांत ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? जब तुमने कंपनी में जॉब करना शुरू किया था तब तो तुमने बताया था कि तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, तो क्या वो झूठ था? जूली ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला। मैं और मेरा भाई पहले एक अनाथ आश्रम में रहते थे, वहाँ से हमें कपिल ने गोद लिया था, और जब मैं आपके पास काम करने आई थी तब मैं उनके साथ ही रहती थी। उसके बाद मेरे भाई को एक गंभीर बीमारी हो गई जिसका खर्चा वे लोग नहीं उठा पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब वे हमें और ज़्यादा अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। तो उसके बाद से मैं और मेरा भाई अपार्टमेंट में रहते हैं। मेरे भाई की दवाइयाँ चालू हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसमें सुधार आ रहा है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दरअसल उसे खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। वो गेहूँ नहीं खाता है, चावल भी नहीं खाता है। उसे मक्के की रोटियाँ चाहिए होती हैं, और हम किसी भी चीज़ से दूर रह सकते हैं पर अनाज से नहीं, इसीलिए मैं उसे बाहर भी नहीं निकालती हूँ। अगर कहीं से थोड़ी सी भी अनाज की धूल भी लग जाती है तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, उसे सांस भी नहीं आ पाती है। जूली के बारे में सुनकर अब वेदांत को बुरा लग रहा था। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं कई बार तुम्हें काम लेट होने की वजह से डांट देता हूँ, जबकि मैं तुम्हारी पारिवारिक स्थिति नहीं जानता हूँ कि कितनी ज़्यादा बुरी है। मुझे उम्मीद है तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम बेझिझक मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, मुझे पता है आप मुझे कभी मना नहीं करेंगे। इनफैक्ट मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा होने लगा है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। विहा मैडम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आपके जैसा पति मिला है, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती।
विहा का जिक्र होते ही वेदांत के सामने एक बार फिर विहा घूम गई, जो उसे बोल रही थी कि उसे अब वेदांत की जरूरत नहीं है और वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया है। वेदांत ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी है जूली, मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ और ना ही कभी बन पाऊंगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। आखिर में मैं अपनी टोमेटो को बहुत चोट पहुंचा देता हूं, उसे बहुत रुला देता हूं, उसकी मनपसंद चीजों को उससे दूर कर देता हूं। इरादा नहीं होता लेकिन ऐसा हो जाता है। जूली ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ये सब आपको किसने कहा कि आप बुरे पति हैं? मैंने देखा है ना आपको अपनी बीवी को संभालते हुए, आप बहुत अच्छे पति हो और गलती सबसे होती है। एक गलती की वजह से मैडम आपकी सारी अच्छाइयों को नहीं भूल सकती है ना। वेदांत ने गहरी सांस भरते हुए कहा, फिलहाल तो वो इतनी तकलीफ में है कि वो खुद को भी भूल चुकी है, तो फिर मेरी अच्छाइयों को कैसे याद रखेगी। मुझे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे उसे वापस पहले की तरह ठीक करने के लिए। अब दिन ढलने लगा है, मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए उनके पास, वरना उसे लगेगा कि उसके एक बार बोलने से मैं उसे छोड़कर चला गया। बहुत ओवरथिंक करती है वो। जूली को वेदांत की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी बीवी को कितना ज्यादा समझता है और उसके संवेदनशील दिल का कितना ख्याल रखता है। उसे पता है कि अपनी बीवी को कोमलता से कैसे संभाला जाता है और उसके एक बार बोलने से उससे दूर नहीं हुआ जाता है, जो आजकल के लड़कों को बहुत देर से समझ आता है। जूली मुस्कुराते हुए उठी और फिर अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपका ड्राइवर तैयार है सर, आपको हॉस्पिटल छोड़ने तक। ये सुनकर वेदांत हल्का सा मुस्कुराया और फिर वे दोनों वहां से उठकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। इस बार भी जूली ही कार ड्राइव कर रही थी और वो बार बार गाड़ी के मिरर से वेदांत के चेहरे को देख रही थी, जिस पर अब परेशानी थोड़ी कम थी। थोड़ी देर बाद जूली की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। जूली ने एक बार वेदांत को देखते हुए कहा, सर ये बैंडेज रात को सोते वक्त बदल लेना, इससे चोट जल्दी ठीक हो जाएगी।
वेदांत ने जूली की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, इतनी प्राइवेट बात भी नहीं थी जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। दरअसल ये चोट विहा की वजह से लग गई, वो बहुत पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी और चीजें इधर उधर उठाकर फेंक रही थी, उन्हीं में से कुछ मेरे सर पर आकर भी लग गईं। ये मत सोचना कि मेरा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। ये सुनकर जूली के चेहरे की मुस्कान चली गई और उसे विहा पर गुस्सा आने लगा। फिर भी उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिएगा। वेदांत ने उसे बाय बोला और फिर तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर चला गया।